ओम शांति। हम सभी ने कल स्वयं की पहचान, आत्मा की पहचान प्राप्त की थी। संभवतः सभी ने पूरा दिन एक दूसरे को देखते हुए आत्मा समझकर देखने का अभ्यास प्रैक्टिस भी की होगी कि किसी ने प्रैक्टिस कि मैं आत्मा दिव्य ज्योति बिंदु हूं और जो मेरे सामने भी भाई बहने आते हैं वह सभी आत्मा ज्योति बिंदु हैं। यदि कल अभ्यास नहीं किया तो आज जरूर कीजिएगा। आज हम सभी इस बात को जानेंगे कि वह परम सत्ता परमात्मा वो कौन है। शब्द सुना आत्मा और आज शब्द सुन रहे परमात्मा। इसी शब्द में ही अर्थ आ जाता है। परमात्मा अर्थात परम सत्ता, सबसे ऊंचे से ऊंचा, बेहद का पिता, हम सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा। सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा को याद करने की कोशिश करती हैं। साधन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कोई भक्ति करता है, कोई जाप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई अन्य किसी माध्यम से परमात्मा को याद करने का प्रयास किया करता है। लेकिन परमात्मा की याद तब टिक सकेगी, परमात्मा को याद तब कर सकेंगे जब उस परमात्मा की हमें सही यथार्थ पहचान होगी। कि बिना पहचान के आप किसी व्यक्ति को याद नहीं कर सकते, तो परमात्मा को भी बिना पहचान के कैसे याद कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि भटक जाती है। जबकि हम पाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए भिन्न भिन्न हस्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास किए। थोड़ा आप सोचिए, पुस्तकों में वर्णन आया कि मीरा ने भगवान को पाने के लिए बहुत सारी यत्न किए, जीवन कुर्बान कर दिया। तो वो कौन है जिसको पाने के लिए मीरा ने अपना सर्वस्व लुटा दिया? वो कौन है जिसे पाने के लिए भक्त जन भक्ति करते हैं, मंदिरों में दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहते हैं घंटों घंटे, उसको पाने के लिए उपवास व्रत किया करते हैं? कौन है वो? कौन सी वो हस्ती है जिसे पाने के लिए लाखों सन्यासियों ने अपने घर बार को, अपने परिवार को, राजाओं ने राजाई को भी त्याग दिया? किसे पाने के लिए उन्होंने संन्यास किया। हजारों लाखों सन्यासी हमें दिखाई देते हैं। वो कौन है जिसे पाने के लिए हठ योगियों ने अनेक प्रकार की हठ क्रियाएं की। कुछ लोग तो एक पांव पर कई कई वर्षों तक खड़े रहते हैं और लक्ष्य उनका परमात्मा को पाना होता है। और आम एक साधारण व्यक्ति, साधारण गृहस्थी, साधारण व्यापारी भी उस परमात्मा को पाने के लिए अनेकों प्रकार के नियम, व्रत, तीर्थ यात्राएं करते हैं। अब कौन सी वो हस्ती है? जरूर कोई बहुत ऊंची हस्ती है जिसे दुख के समय चाहे कोई जानता है या नहीं जानता, लेकिन चाहते या ना चाहते भी मुख से हे भगवान, हे ईश्वर ऐसे शब्द निकल जाया करते हैं। तो किसे पाने के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। अब वो परम सत्ता जिसे पाने की सब कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सभी ने कोशिश की भी, लेकिन फिर भी परमात्मा तक पहुंच नहीं पाए। अपनी कोशिशों में कुछ हद तक भावना के आधार से अल्प समय के लिए शांति सुख उन्होंने पाया, लेकिन सत्य परमात्मा तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उस परमात्मा की पहचान किसी मनुष्य आत्मा के पास है ही नहीं। अब परमात्मा स्वयं सृष्टि का रचयिता, वो हमें अपनी पहचान स्वयं आकर के देते हैं। आप शारीरिक रूप में भी देखेंगे, कोई भी लौकिक पिता, शारीरिक पिता अपने बच्चे को अपनी पहचान स्वयं दिया करते हैं। माँ स्वयं बताती हो छोटे से मासूम बच्चे को कि मैं तुम्हारी मम्मी हूं, तो मुझे बोलो मम्मी मम्मी। माँ अपने लिप्स लैंग्वेज से उसे बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूं। पिता स्वयं बताता है बच्चे को मैं तुम्हारा पिता हूं। और धीरे धीरे जब बच्चे को पता लगने लगता है, बच्चा वो पिता के हाथों का स्पर्श अनुभव करता है, उस प्यार के वाइब्रेशंस को कैच करता है, तो जब बोलना प्रारंभ करता है तो वो पापा पापा मम्मी मम्मी कहना शुरू कर देता है। तब उसके अंदर माता पिता के प्रति वो प्यार जागृत होता है, संबंध जुट जाता है। देखिए संबंध कैसे जुटा, पहले उसे पहचान मिली, फिर उसने उस संबंध को फील किया और उस फीलिंग के बाद उसने शब्द बोला और पिता ने उस बच्चे को पालना देकर उसे अधिकारी बनाया, स्वीकार किया, ये मेरा बच्चा, मेरे वर्से का हकदार है, मेरा वारिस है। वाइब्रेशंस, वो छोटा सा बच्चा भी कैच करता है। अब हम आज जानना चाह रहे हैं उस परम सत्ता को, उस परम पिता को, परंतु परमात्मा को जो अब तक हम याद करते आ रहे हैं, लेकिन हमें उनकी यथार्थ पहचान नहीं है, हमें उनके स्पर्श का कुछ अनुभव नहीं है, हमने उनसे कोई संबंध जोड़े नहीं है, इसलिए जो फीलिंग वो बहुत समीपता की हो कि वो मेरा पिता है, वैसी वो प्यार भरी फीलिंग नहीं रहती। केवल दुख के समय, आवश्यकता के समय ही हमारे मुख से हे भगवान आदि निकलता है। अब वो परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता, अपनी पहचान हमें स्वयं आकर के देते हैं। परमात्मा को स्वयंभू भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भूमि पर अवतरित होते हैं। तो परमात्मा ने इस धरा पर आकर के क्या अपनी पहचान अपने बच्चों को दी? परमात्मा ने देखा ये मेरे बच्चे मेरे को पहचान नहीं रहे। परमात्मा परमात्मा कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आश्रमों में जा रहे हैं, परंतु मेरे को पहचानते नहीं है। तब परमात्मा ने स्वयं अपनी पहचान अपने बच्चों को दी, और पहचान देने के लिए उन्होंने कुछ निशानियां हमें बताई। कौन कौन सी निशानियां बताई? किसे मान सकते हैं, किसे हम कह सकते हैं परमात्मा? सबसे ऊंच, सर्वश्रेष्ठ, परम किसे कह सकते हैं? जितने संसार में मनुष्य आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न मनुष्य और भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं उनके अंदर हैं। कोई कहता है श्री राम जी भगवान हैं, जितने भी आकारी देवता हैं वो भगवान के रूप हैं, ऐसा मान लिया करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि परमात्मा एक शक्ति है बस, कुछ मानते हैं परमात्मा नेचर है, कुछ कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं होता, कर्म अच्छे करने चाहिए बस, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, यही भगवान होता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं ही भगवान हूं, आत्मा परमात्मा मैं ही भगवान, एक ही हो गया। और कोई कहता भगवान भगवान कुछ होता ही नहीं है। अब इतनी सारी मान्यताओं के कारण व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर भी मैं भगवान परमात्मा मानूं तो किसको मानूं, किसको याद करूं, मेडिटेशन करूं तो किसको सामने रखकर मेडिटेशन करूं। तो परमात्मा ने जो अपनी पहचान अपने बच्चों को बताई, उसमें सबसे पहली मुख्य बात बताई कि मैं निराकार हूं। किसी भी शरीरधारी को परमात्मा कदापि नहीं कह सकते। क्योंकि क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो भी देहधारी होगा उसकी आयु कितनी भी बड़ी हो परंतु फिर भी उसकी मृत्यु तो होगी ही, परंतु परमात्मा की मृत्यु नहीं होती, जन्म मरण से न्यारे हैं। फिर यदि किसी भी देहधारी को यदि हम परमात्मा मानते हैं, तो यदि वो स्त्री तन में है उसको मां कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं, देवी कह सकते हैं, लेकिन उसे हम पिता नहीं कह सकते। जबकि परमात्मा को तो हम माता पिता दोनों ही कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो परमात्मा माता पिता बंधु सखा स्वामी है। अब एक देहधारी सर्व संबंधी नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने पहली निशानी क्या बता दी कि मैं निराकार हूं, मेरा साकार मनुष्यों सदृश रूप नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, परमात्मा हम उन्हें कह सकते हैं जो सारी सृष्टि के माता पिता हों, परंतु उनके निजी माता पिता न हों। जितने भी देवी देवताएं हैं उनके भी माता पिता बताए गए, लेकिन परमात्मा का कोई माता पिता नहीं है। अगर उनके भी माता पिता हों फिर तो माता पिता बड़े हो गए, परंतु परमात्मा से बड़ा तो कोई होता ही नहीं। वो स्वयं सारी सृष्टि के पिता हैं, सबसे बड़े हैं। तो परमात्मा उन्हें कह सकते हैं जो सबके माता पिता हों परंतु उनके कोई माता पिता न हों। तीसरी बात, तीसरी निशानी, परमात्मा उन्हें कह सकते हैं जिनका जन्म मां के गर्भ से न हो, उनका जन्म दिव्य और अलौकिक हो, जिसका भी जन्म मां के गर्भ से हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी। परंतु परमात्मा इस जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे हैं। चौथी निशानी, परमात्मा उन्हें कह सकते हैं जो सर्वमान्य हों। सर्वमान्य का अर्थ क्या है, जिन्हें सभी धर्म की आत्माएं मान्यता देती हों। समझ में आया, सभी धर्म की आत्माएं जिन्हें मानती हों, स्वीकार करती हों, उन्हें परमात्मा कह सकते हैं। और लास्ट, परमात्मा उन्हें कहा जा सकता है जो सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान हों, सबसे ऊंचे हों, सबको जानने वाले हों और सर्वशक्तिवान हों। अब ये थोड़ी सी निशानियां हमने आपको बताई जो परमात्मा ने हमें बताई। अब आप इन निशानियों को अपने सामने अपनी बुद्धि में रखते हुए आप स्वयं डिसाइड कीजिए, निर्णय कीजिए किन्हें परमात्मा मान सकते हैं, ये सारी निशानियां किस पर लागू होती हैं। जिनको भी अभी तक हम भगवान मानते आ रहे हैं, जिनकी भी प्रतिमाएं हम मंदिरों में अन्य धार्मिक स्थलों पर देखते आ रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक उनके आगे झुकते आ रहे हैं, उनमें से किसी भी प्रतिमा को अपने सामने रखते हुए इन बातों को अपने सामने लाओ और लागू करके देखो कि क्या ये सारी बातें उन पर लागू हो रही हैं। यदि हो रही हैं तो उन्हें हम भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मान लीजिए हम सभी अपनी बुद्धि में श्री राम को, श्री कृष्ण को, दुर्गा माँ को, शीतला माँ को, अन्य देवियों को, अन्य देवताओं को अपने सामने लाते हैं, या मान लीजिए हम धर्म पिताओं को लाते हैं, हम गुरु नानक देव जी को सामने लाते हैं, क्राइस्ट को सामने लाते हैं। अब सोच के देखिए क्या कोई निराकार है? नहीं। क्या ऐसी कोई हस्ती है इस लाइन में जिनके माता पिता ना हो और वो स्वयं सबके माता पिता हो? ऐसा भी नहीं है। फिर गर्भ का तो सवाल ही नहीं, जब माता ही नहीं तो गर्भ की भी बात नहीं, फिर उनको सब मानते हो। मान लीजिए हम श्री राम जी को ही भगवान मान लेते हैं, तो क्या श्री राम को केवल हिंदू, अन्य धर्म की बात भी नहीं कर रहे, क्या सारे हिंदू श्री राम को भगवान मानने को तैयार हैं? नहीं। कोई श्री कृष्ण को मानता है, कोई श्री नारायण को मानता है। तो किसी ने भी उस एक को नहीं माना कि वो एक भगवान है। तो फिर जो हम ये निशानियां बता रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी बातें किस पर लागू हो रही हैं? और हम ये जानते हैं कि जो हम बात आपको कह रहे हैं उस परम हस्ती को, उसकी प्रतिमा को आपने देखा जरूर है, सभी ने देखा है, तो किसको कहेंगे परमात्मा? बता सकेगा कोई किस पर ये सारी बातें लागू हो रही हैं? नहीं आया अभी किसी की बुद्धि में, क्लिक नहीं हुआ जी? अच्छा, शिव बाबा आ गया, ठीक, तो उत्तर ठीक दे दिया आपने। ये सारी बातें, ये सारी बातें परमात्मा शिव पर लागू होती हैं। ये शिव का यादगार हम मंदिरों में शिवलिंग के रूप में देखते हैं, शिवलिंग। अब वो परमात्मा पिता क्योंकि निराकार हैं, उस निराकार को उस शिवलिंग के रूप में दिखा दिया गया। जैसे स्त्री को स्त्रीलिंग, पुरुष को पुल्लिंग, शिव को शिवलिंग बनाया गया। शिवलिंग माना परमात्मा का यादगार, यादगार प्रतिमा है। इतने बड़े परमात्मा नहीं है लेकिन यादगार हैं। अब उनके कहीं कोई माता पिता नहीं बताए, उनको सभी ने माना भी है, और वही सर्वोच्च, सर्वशक्तिवान, सर्वज्ञ भी हैं। आप अभी अपने सामने एक चित्र को देख रहे हैं कि परमात्मा पिता जो निराकार हैं, आपने यहां पर अनेकों स्थानों पर एक लाइट को देखा होगा, तो वो जो लाइट दिखाई गई है वही परम सत्ता परमात्मा का यादगार है, उसी को दिव्य ज्योति कहा जाता है, डिवाइन लाइट कहा जाता है। वो परम सत्ता है, वो परमात्मा है। यहां पर सामने ब्रह्मा बाबा को भी हम देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि हर जगह ब्रह्मा बाबा के चित्र लगे हुए हैं, शायद यही भगवान है। नहीं, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि हर देहधारी में यदा कदा परिवर्तन आता रहता है, परंतु परमात्मा अपरिवर्तनीय हैं, उनके अंदर कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। तो परमात्मा एक दिव्य लाइट, दिव्य ज्योति है, उसी को ही स्टार के रूप में, उसी को शिवलिंग के रूप में, उसी को कोई ज्योत के रूप में दिखा दिया करते हैं। और जो हमने निशानियां बताई, उन निशानियों के हिसाब से आप देखेंगे उस शिवलिंग का जो आकार है वो निराकार दिखाया है, और उनको सभी ने माना है। आप इस बात को देखेंगे कैसे परमात्मा को सभी ने माना है, हर जगह उस परमात्मा के यादगार भिन्न भिन्न नामों से मंदिर बने हुए हैं। किसी ने अमरनाथ कह दिया, किसी ने सोमनाथ कह दिया, किसी ने केदारनाथ कह दिया, किसी ने बबुलनाथ कह दिया, किसी ने पापकटेश्वर कह दिया, किसी ने मुक्तेश्वर कह दिया। परमात्मा के अनेकों नाम रख दिए गए, गुणवाचक नाम है ये। आप पाएंगे अमरनाथ में, वहां जब बर्फ गिरती है तो बर्फ गिरते गिरते बूंद बूंद पानी गिरते बर्फ बनती जाती है, और उसके ऊपर लगातार वो बूंद बूंद आती है और वो बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। उसी को गुणवाचक नाम परमात्मा में अमर बनाने वाले हैं, इसलिए अमरनाथ कह दिया। विश्वनाथ में भी उस शिव का ही मंदिर बना हुआ है, पूरे विश्व का नाथ, रक्षक, मालिक वो परमात्मा है। हमारी हिस्ट्री ये बताती है जो सबसे पहला मंदिर बना वह सोमनाथ का मंदिर बना, जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनाया, और वह शिवलिंग डायमंड से बनाया गया था। हिस्ट्री में आता है कि बाद में मोहम्मद गजनवी ने उसको लूटा, लेकिन मोहम्मद गजनवी को यदि ज्ञान होता कि अल्लाह का ही यादगार है तो शायद हिस्ट्री में चेंज आता। उसी प्रकार से नेपाल में, हमारे बहुत सारे नेपाल से भाई बहने आए हैं, मैंने स्वयं देखा इस मंदिर को, वहां है मंदिर पशुपतिनाथ नाम से, वो भी शिव का मंदिर है, लेकिन नाम पशुपतिनाथ, अर्थात जब मनुष्य की वृत्ति, मनुष्य के कर्म पाशुविक बन जाते हैं, पशुओं तुल्य बन जाते हैं, तो उस पाशुविक वृत्ति को बदलने वाले पशुपति नाथ कहलाने लगे। मक्का में वहां पर गोल आकार का काले रंग का पत्थर लगाया हुआ है, जिस पत्थर को हज करने से पहले चूमते हैं, जिसे कहते हैं संगे अश्वद, और हिंदू लोग इसे कहते हैं मक्केश्वर, मक्का का ईश्वर। जापान में बुद्धिस्ट लोग हैं, वो लोग 3 फुट का 2.5-3 फुट का एक ऊंचा सा स्टैंड रखते हैं और उस पर शिवलिंग जैसी आकृति होती है, जिस पे अपने मन को वो एकाग्र किया करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, और अपनी भाषा में उसे बोलते हैं चिनकांग सेकी, जिसका अर्थ शांति दाता होता है। उसी प्रकार से गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक देव जी ने कहा एको एंकार, अकाल मूरत। अकाल मूरत कौन है परमात्मा? इसको काल नहीं खा सकता, अकाल, अकाल मूरत, उसे कह देते हैं सत्य श्री अकाल। परमात्मा सत्य है, श्री माना श्रेष्ठ है, अकाल माना उसे काल नहीं खा सकता। क्राइस्ट ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट, मैं परमात्मा की संतान और परमात्मा एक लाइट है। और आज भी चर्च में जो लोग जाते हैं तो एक कैंडल को जलाते हैं और उसकी जो लौ है, ज्योत है, उस ज्योत को ही भगवान मानते हैं, क्राइस्ट को भगवान नहीं कहते। स्वयं क्राइस्ट ने कहा मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान की संतान हूं। उसी प्रकार से रामेश्वरम में श्री राम को भी शिव की ही पूजा करता हुआ दिखाया गया। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण को भी शिव की पूजा करता हुआ दिखाया गया। हमारा कहने का भाव क्या है कि जितने भी धर्म स्थापक हुए, जितने भी देवी देवताएं हुए, उन सभी ने भी उस परम सत्ता निराकार को भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न शब्दों से याद किया, अर्थात वो परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा कौन है? एक लाइट, जिन्हें हजारों नामों से याद करते हैं, परंतु एक नाम है सदा शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी। तो शिव नाम ऐसा नाम है जिसमें सारे गुण एक साथ शामिल हो जाते हैं, इसीलिए सदा शिव कह दिया जाता है और हम उन्हें शिव बाबा कहते हैं। बाबा क्यों कह दिया? जैसे बड़े बुजुर्ग को भी बाबा जी कह दिया करते हैं, तो जो सारी सृष्टि का बड़ा है, सबसे बड़ा है बाबा, शिव नाम है और बाबा हमारे पिता हैं। अगर केवल हम ईश्वर, भगवान, अल्लाह कहते हैं तो उतना प्यार पैदा नहीं होता। प्यार पैदा होता जब बाबा, पिता कहते हैं। बच्चा भी अपने पिता को पापा, पिताजी ऐसा बोलता है तो उसके अंदर प्यार पैदा होता है। नाम कहने से वो प्यार पैदा नहीं होता, वो फीलिंग संबंध की आए, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। तो देहधारी को बाबा नहीं कहा, हाँ वे ब्रह्मा बाबा हैं, परंतु शिव बाबा के माध्यम में केवल। लेकिन हमें याद किसको करना है, मेडिटेशन किसे करना है? शिव बाबा से करना है। देखिए, जो मेरा पिता है, थोड़ा सा सोचिए, जो मेरा पिता है वही तो मेरी बात को सुनेगा और मेरी बात को सुनकर जवाब भी देगा और जो मैं चाहूंगी वो मुझे देगा भी, पर जो मेरा पिता होगा वही देगा, और जो मेरा पिता है ही नहीं। हम किसी को ऐसे ही कहते रहे भी मेरे पिताजी जैसे लग रहे थे, जा रहे थे पीछे से देखा पिताजी जैसे लग रहे थे, और हमने कह दिया पिताजी पिताजी पिताजी, वो सुनते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी है ही नहीं। लेकिन मेरे पिताजी को तो मेरी आवाज का भी पता होगा, मेरे विचार का भी पता होगा, मैं क्या चाहता क्या चाहती हूं वो भी पता होगा, और वो मेरी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सब कुछ लगा भी देंगे, क्योंकि मेरा वो पिता है। तो हम सभी गलती क्या कर रहे थे कि जो हमारे माता पिता हैं नहीं, उनके आगे जाकर हम कह रहे हैं हमको शांति दे दो, हमको सुख दे दो, हमारी ये अल्पकाल की इच्छाएं, चाहे वो भौतिक चाहे वो बौद्धिक, हम उनसे मांग रहे हैं जो हमारे माता पिता नहीं है। क्लियर हो गया? कौन है हमारे माता पिता? एक एक साथ बोलेंगे सभी, कौन है हमारे माता पिता? एक हैं और वो हैं शिव बाबा। एक बार सभी मिलके बोलेंगे शिव बाबा। हम सभी आत्माओं के पिता, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा हैं। जब भी कोई बात करनी हो, कुछ शेयर करना हो, कुछ लेना हो, शिव बाबा को कहिए, शिव बाबा आपकी हर बात सुनेंगे, हर बात का जवाब भी देंगे। हो सकता है कभी कभी जवाब देने में थोड़ा लेट हो जाए, पिता को मालूम है कौन सी बात का जवाब देना है, कौन सी बात का जवाब अभी नहीं देना है। आपके बच्चे आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और आप कहते हैं अरे नहीं, आप बच्चे हो ना अभी रहने दो, बड़े हो जाओगे ना पता लग जाएगा, छोड़ देते हैं आप। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हम पूछते हैं तो समय में जवाब नहीं मिलता, कोई बात नहीं, इंतजार करें। हम परमात्मा को प्यार से याद करते रहें, नाम हजारों होते हुए भी एक नाम में सारे गुण शामिल होते हैं। तो शिव बाबा महात्माओं के पिता, लेकिन अब शिव बाबा से अर्थ शंकर बाबा से नहीं है। अभी तक हम शिव और शंकर दोनों को एक ही मानते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक राज बताना चाह रहे हैं जो स्वयं परमात्मा ने अपनी पहचान में ये बात भी बताई कि शंकर भी परमात्मा की रचना है, क्रिएशन है। आप देखेंगे शिव और शंकर दोनों प्रतिमाएं हमारे सामने हैं। शिव को हम लिंग के रूप में देखते हैं और शंकर को आकारी देवता के रूप में देखते हैं। शंकर के लिए कहा जाता है उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, इस सृष्टि का विनाश हो गया, तो शंकर विनाश का कार्य कराने वाले और शिव कल्याण का कार्य कराने वाले। शंकर को तपस्वी रूप में देखते हैं जो स्वयं तपस्या कर रहे हैं, जरूर उनसे बड़े कोई और हैं, यदि वो स्वयं भगवान हो फिर तो उन्हें तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु वो भगवान नहीं है। शिवलिंग पर आपने तीन लाइनें देखी होंगी, सामने दिखाई दे रही होंगी तीन लाइनें, ये भी इसी चीज का प्रतीक है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं के रचिता जो बीच में बिंदी है ना, वो शिव बाबा हैं। ये तीन देवताओं का प्रतीक, ये त्रिपुंडी से कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताएं, लेकिन शिव परमात्माएं अलग हैं। शंकर आकारी हैं, देवताएं तपस्वी हैं, विनाशकारी हैं, और शिव ज्योति बिंदु हैं, कल्याणकारी हैं, सर्वात्माओं के पिता हैं। दोनों में अंतर है। तो जब मेडिटेशन करना है तो किसके साथ करना है, उनको भी बुद्धि में नहीं लाना, विनाशकारी को भी नहीं लाना। किसको लाना है? दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश को। अब परमात्मा का रूप हमने एक तरफ कहा वो निराकार है, तो निराकार का ऐसा अर्थ हम समझ लेते हैं जिनका कोई आकार ही ना हो, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं वो दिव्य ज्योति है, दिव्य ज्योति भी एक आकार हो गया। तो ये निराकार शब्द जो है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसका आकार न हो, छोटा सा एक कण भी होगा ना, तिनका भी होगा, उसे भी तिनका कह देते हैं, कण कह देते हैं, अणु कह देते हैं, कोई ना कोई शब्द से उसकी संज्ञा हम कर देते हैं। लेकिन परमात्मा को निराकार जो कहा गया, ये कंपैरिजन में कहा गया, तुलनात्मक शब्द है निराकार। जैसे तुलना में कह दिया जाता है छोटा बड़ा, पतला मोटा, तुलना में। अभी आप इस हॉल में यहां बैठे हैं, अभी आपको हॉल बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप यहां से आबू रोड नीचे जाएंगे और अपना शांति वन का डायमंड हॉल देखेंगे जिसमें 20,000 लोग बैठ सकते हैं, फिर क्या लगेगा? ये तो छोटा है। वैसे छोटा नहीं है, वो तुलना में छोटा है ना। तो वैसे निराकार का मतलब जैसे देहधारियों का स्त्री पुरुष जैसा अपना आकार है, देवी देवताओं का अपना आकार है, परमात्मा आकारी देवताओं जैसा भी नहीं है, वो निराकार है, वो एक लाइट है। जैसे जीरो को रेखा गणित की भाषा में कहा जाता है कि जीरो की लंबाई चौड़ाई होती है परंतु उसे नापा नहीं जा सकता, वैसे ही परमात्मा का भी आकार है परंतु उसे आकार दिया नहीं जा सकता, इसलिए उसे निराकार कह दिया जाता है। तो परमात्मा का रूप कैसा है? दिव्य ज्योति प्रकाश, चमकता हुआ सितारा। अब परमात्मा पिता कहां रहते हैं? देखिए, किसी का भी परिचय संपूर्ण चाहिए तो उनका नाम भी चाहिए, उनका एड्रेस भी चाहिए, किस रूप में हमको मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब चाहिए, तब उनसे मिलना हो सकता है। तो परमात्मा का नाम और रूप आपको पता लग गया, लेकिन रहते कहां हैं? और कल आपको एक बात बताई गई थी कि आप आत्मा हैं और आत्मा का परमानेंट घर, याद है किसी को क्या बताया गया था? आत्मा का परमानेंट घर, जिसको याद हो जरा हाथ खड़ा करें, परम धाम, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जिसे मुक्ति धाम भी कहते हैं, जिसे परलोक कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं, परम धाम मुख्य नाम है, वहां आत्मा का परमानेंट घर है। तो परमानेंट घर बच्चे का हुआ, बच्चे का कैसे हो गया, किस हक से हो गया बच्चे का घर परम धाम? क्योंकि बच्चे के पिता का घर, जो पिता का घर वो बच्चे का घर होता है। तो परमात्मा क्या रहते हैं? परमात्मा परम धाम रहवासी हैं, ठीक है? ठीक है। अब कुछ लोगों के अंदर ये धारणा है कि परमात्मा तो हम सब के अंदर हैं, जहां देखो वहां तू ही तू है, कण कण में भगवान है, वो तो ओमनी प्रेजेंट है, तेरे में मेरे में सब में भगवान। अब ये बात और भगवान परम धाम रहवासी, दोनों में अंतर हो गया। तो अब आप देखेंगे, यदि हम ये मानते हैं कि परमात्मा सब के अंदर है, अब यहां पर जितने भी भाई बहने बैठे हैं, अगर सब के अंदर भगवान है, तो हम ये जो कहते हैं गॉड इज वन, फिर क्यों कहते हैं गॉड इज वन? ये तो हम सारे ही भगवान हो गए। फिर तो कहना चाहिए परमात्माएं, आत्माएं कहते हैं, परमात्मा एक के लिए कहा जाता है, गॉड इज वन कहा जाता है। फिर हम सब के अंदर तो अभी हम कह रहे हैं आत्मा है, परमात्मा तो हम आत्माओं के पिता हैं। अब देखेंगे, एक भक्त भक्ति करता है और क्या कहता है, भक्ति करते हुए, हे प्रभु दर्शन दो। अगर उस भक्त में ही भगवान है तो उसे दर्शन की प्यास क्यों है? किसके दर्शन करना चाहता है? जो चीज उसके पास ही है। देखिए, आपके पास डायरी पेन है और आप कहें डायरी पेन दे दो, अरे है ही ना आपके पास। भक्त में यदि भगवान है तो फिर दर्शन किसके करना चाहता है? हम योग किससे लगाना चाहते हैं, किस लिए लगाना चाहते हैं? यदि हम खुद ही भगवान हैं, फिर दुख में परेशानी में क्यों भगवान याद आता है? फिर तो खुद को ही याद करें बस। दो व्यक्ति यदि एक दूसरे का खून करते हैं, होता ना आज की दुनिया में तो हर आए दिन ऐसे समाचार मिलते हैं, और यदि दोनों में भगवान है, तो क्या भगवान भगवान का खून करता? क्या ऐसा होता? ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब दोनों में भगवान नहीं है ना, तब ऐसे कार्य हो रहे हैं। आज तो बहुत सारे गलत कार्य हो रहे हैं, तो सब सब जगह भगवान मानना। वैसे ही यदि हम देखेंगे कि यदि इसमें उदाहरण के रूप में दिखाई है बहुत सारी बातें, कि अग्नि पर छोटा सा काला कोयला या लोहे का पीस रख दें, तो वो लोहा भी अग्नि के संग में लाल हो जाता है, वो काला कोयला भी लाल हो जाता है। और यदि परमात्मा हमारे अंदर हो, तो मुझ आत्मा के अंदर भी वो सारी शक्तियां सारे गुण होने चाहिए थे, परंतु नहीं दिखाई दे रहे। यदि एक रोगी को हम देखेंगे, कितने रोगी हैं इस दुनिया में, रोगी कहता है प्रभु जी दुख हरो, मेरे को इस बीमारी से मुक्त करो। अगर रोगी के अंदर ही भगवान है, भगवान तो स्वयं दुख हरता सुख करता है, उसे रोग है ही क्यों? तो यदि परमात्मा सब जगह है, सब में है, तो ना तो कोई गलत कार्य हो ना कोई गलत कार्य करने वाला हो, तो परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं मान सकते। गीता में एक लाइन आई, बहुत बार आपने सुना होगा, जब जब महाभारत सीरियल आप देखते हैं तो पहले श्लोक आता है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, मुझे आना पड़ता है। इसका मतलब पहले से नहीं आया हुआ हूं। आप दो दिन से आए हुए हैं और यदि मान लीजिए आज कोई आता है तो कहेगा मैं आज आया हूं, आप कहेंगे हम तो यहां रहे हुए हैं और जो यहां संपूर्णता समर्पित हैं वो क्या कहते हैं, हम तो यहीं रहते हैं, हम आए हैं नहीं कह रहे, मुझे आना पड़ता, उन्हें कहने की जरूरत नहीं, परमात्मा को कहना पड़ा धर्म की अति ग्लानी के समय में आता हूं। इसका मतलब पहले से मैं किसी के अंदर भी नहीं आया हुआ हूं। तो हमारे अंदर कौन है, क्या समझ में आया, हमारे अंदर आत्मा है, मैं आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा की संतान है। आत्मा और परमात्मा में केवल इतना ही अंतर है, हैं दोनों ही स्टार लाइट, परंतु आत्मा एक शरीर छोड़ती है दूसरा धारण कर लेती है, रीबर्थ के चक्र में आती है, और परमात्मा रीबर्थ के चक्र में नहीं आते। आत्मा बदलती रहती है, आज कोई खराब काम करता है कल राजयोग का अभ्यास करता है ठीक हो जाता है, अच्छे कर्म करने लगता है, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परमात्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वो सदा ही परम है, सदा ही श्रेष्ठ है। रूप दोनों का एक जैसा, दोनों का घर भी परम धाम है। हमारे अंदर परमात्मा नहीं है, परमात्मा परम धाम रहवासी हैं। आपने देखा होगा वो आरती हम लोग करते हैं भक्ति मार्ग में, उसमें बोलते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, फिर क्या बोलते हैं आगे, क्या बोलते हैं आगे, तुम सब के स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर। तो पार ब्रह्म परमेश्वर वहां अंदर वाली बात ही नहीं कर रहे, कोई बात होती है तुम कहते ऊपर वाला जाने, कभी नहीं कहते अंदर वाला जाने, इर्द गिर्द वाला जाने, ऊपर वाला जाने, सबकी नजर ऊपर की तरफ जाती है। तो परमात्मा परम धाम के रहवासी हैं, ये पक्का याद करना। जब मेडिटेशन करोगे तो बुद्धि को यहां से इस दुनिया से पार परम धाम में लेके जाना है, शरीर यहीं रहेगा, बुद्धि से मन, बुद्धि से हमने परम धाम जाना है। आपको जो परिचय परमात्मा का दिया जा रहा है इसलिए कि आपको राजयोग का अभ्यास करने में बहुत सहज हो, ये योग का ये कदम है। अब परमात्मा के गुण हजारों लाखों गुण हैं, परमात्मा को ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर कहते हैं। परमात्मा के गुणों की जब महिमा करते हैं तो कहते सारे सागर को स्याही बना दें, सारे वृक्षों की लकड़ी को कलम बना दें, सारी धरती को कागज बना दें, तो भी प्रभु के गुण लिख नहीं सकते। यहां तक विद्या की देवी सरस्वती भी प्रभु के गुण लिखने लगे तो लिख नहीं सकती, इतने बेहद के अथाह गुण है, सागर है वो। और वो सागर कौन है, मेरा पिता है। हमने क्या पहचानना है? वो जो गुणों का सागर है, जो सारी सृष्टि को देने वाला है, करोड़पतियों पद्म पतियों को भी देने वाला है, जो सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, जो सबकी हर हाल में सुनने वाला है, वो कौन है? मेरा पिता है। आप किसी व्यक्ति का पिता, किसी बच्चे का पिता, अगर पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है ना, किसी अच्छे और पद पर होते हैं, तो बच्चे को नशा रहता, मेरा पिता एसडीएम है, मेरे पिता ये हैं, सुनाएगा। उस बच्चे को हमेशा नशा रहेगा, खुशी रहेगी। फिर वो और लोगों को भी कहता है कि भाई कोई काम वाम हो तो बता देना, मेरे पापा कर देंगे। तो आपके पापा कौन है? आपके पिता, आत्मा के पिता, परमात्मा, परमात्मा। और आप अपने काम कराने के लिए, छोटे छोटे काम कराने के लिए इधर उधर जाते हैं, केवल आप उससे पिता का संबंध जोड़ लें। केवल पिता शब्द कहें नहीं, पिता का, बच्चे का पिता और पुत्र का रिश्ता जोड़ लें। फिर आपके सब काम स्वतः ही पिताजी करेंगे, आप तो आराम में आ जाओगे, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं। बोले पापा को, बोले वो करेंगे। इसलिए कहते हैं वो करावनहार, करण करावनहार उसे कहें, वो करावनहार। हम तो करणहार हैं, हम केवल निमित्त हैं, कराने वाला वो है, देने वाला वो है। वहां बुद्धि को ले जाए। तो जो परमात्मा के गुण हैं, मुझ आत्मा के भी वही गुण हैं। देखिए, जो राजा का बच्चा है वो राजकुमार तो है ही ना। हम परमात्मा के बच्चे हैं, जो परमात्मा के गुण हैं, वास्तव में वो मेरे भी गुण हैं। परंतु बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण वो गुण हमारे छिप गए हैं। हमने करना क्या है? उस परमात्मा पिता को याद करके हमने अपने अंदर, आत्मा के अंदर जो असीम शक्तियों का भंडार भरा हुआ है, जो परमात्मा ने गॉड गिफ्ट के रूप में मुझे दिया है, आत्मा के अंदर वही गुण सब हैं। उन गुणों को परमात्मा की याद से बढ़ाना है, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। परमात्मा ने जो मुझे आत्मा में गुण दिए, संसार में आप देखेंगे बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और कुछ ऐसे लोग कमजोर भी हैं जो सोचते हम तो ये छोटा सा काम भी हम नहीं कर सकते, हमारी क्षमता नहीं है। अंतर क्यों हो गया? क्योंकि जिसने अपनी शक्ति को जितना पहचाना और यूज किया वो महान बन गया। जिसने अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं, परमात्मा में क्या बता रहे, आपके पास असीम शक्तियों का भंडार है, आप उसे देखें, पहचानें, यूज करें कर्म में। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, मन अशांत बेचैन हो रहा है, तो जब कोई अशांति वाली बात होती, कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बनता है, किसी व्यक्ति ने हमें ऐसी कोई बात कह दी जो हमारे मन पसंद नहीं थी या हमारी इच्छा के विरुद्ध थी, उसने कह दी, उससे हमारा मन डिस्टर्ब हो रहा है, दुखी हो रहा है। ऐसे में हमको क्या करना है? अब होता क्या है, प्रैक्टिकल वो दुखी करता है पर हम दुखी होते रहते हैं। परंतु हमने करना क्या है, हमें उस समय याद करना है कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो शांति के सागर की संतान हूं। शांति के सागर की संतान बार 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 दोहराएं, याद करें। मैं शांति के सागर की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांति के वाइब्रेशन अपने आप को भी दूं और वो अशांत आत्मा उसको भी दूं। आप करके देखिए, दो मिनट में वो बोलने वाला, अशांत करने वाला, वो भी शांत हो जाएगा। हम बार बार ये कहें मैं प्यार के सागर परमात्मा की संतान हूं, प्यार के सागर की संतान, मैं भी प्यार स्वरूप, तो जो हमारे अंदर क्रोध आ रहा था वो रुक जाएगा, क्योंकि मैं तो प्यार के सागर की संतान, तो मुझे तो प्यार देना है ना। आज क्यों जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता है, क्यों हम ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्यों एग्रेसिव हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो प्यार की कमी हो गई है, हमें विस्मृति हो गई है कि हम प्यार के सागर की संतान हैं। हम बार बार याद करें, दोहराएं, जितनी बार दोहराएंगे परमात्मा का प्यार पाएंगे, और जितना प्यार आपका बढ़ेगा उतना आप दूसरों को दे पाएंगे। तो परमात्मा गुणों के सागर हैं, मुझे उनका स्वरूप बनना है। वर्तमान समय जो चल रहा है, ये कौन सा समय है, कब आते हैं परमात्मा इस धरा पर? परमात्मा ने कहा जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पर आता हूं। यदि हम चारों ओर नजर घुमा के देखेंगे तो धर्म ग्लानि के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। धर्म ग्लानि के कुछ लक्षण बताए गए, उन लक्षणों में बताया जाता है धर्म ग्लानि का ऐसा टाइम होता है जबकि गेहूं पुड़ियों में बिकने लगता है, बहुत महंगा हो जाता है, जब कन्या स्वयं वर मांगने लगती है, या फिर कहते हैं गाय जिसको पवित्र माना जाता था, जिसकी पूजा होती थी, वो विष्ठा खाने लगती है, गंध में मुंह मारने लगती है, केशों का श्रृंगार होने लगता है। आज किसी एरिया में मंदिर हो या ना हो, लेकिन ब्यूटी पार्लर जरूर होंगे, केशों के श्रृंगार में लाखों रुपए खर्च होता है, ये भी धर्म ग्लानि का एक लक्षण है। भाई बहन में कुदृष्टि, अपवित्र दृष्टि बन जाती है। तो ये जो इसमें एक बात ये खास बताई कि धर्म के नाम पर भी हिंसा के कार्य शुरू हो जाते हैं, और जब साइंस शून्य तक पहुंच जाती है, एक्सट्रीम, तो ये जो सारे लक्षण धर्म ग्लानि के बताए गए, आज सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अर्थात धर्म ग्लानि हो चुकी है। और आपको एक खुशखबरी सुना दें, परमात्मा भी आ चुके हैं। ताली बजा सकते हो, किस लिए ताली बजाई? परमात्मा आ चुके हैं हमको जो चाहिए वो देने के लिए। अब जो समय चल रहा है यह कलयुग का अंत और सत्ययुग का प्रारंभ का समय, इन दोनों के बीच के समय जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, किस लिए? नर्क के समाज को बदल सुखमय स्वर्णिम समाज बनाने। यहां कॉन्फ्रेंस रखी गई कि आप मददगार बन जाएं परमात्मा के। परमात्मा तो उस कार्य को कर ही रहे हैं, 1936 से कार्य प्रारंभ हो चुका है, परंतु हम परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बन जाएंगे तो उसका फल भी हमें मिलेगा। देश की आजादी में गांधी जी के साथ जो सहयोगी बने उनको भी फल मिला, आज भी वो फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं और उनको बहुत सारी फैसिलिटीज आज भी मिल रही हैं। तो परमात्मा जो नई दुनिया की स्थापना करें, नए समाज को ला रहे हैं, इस धरा को स्वर्ग बना रहे हैं, कहीं और नहीं जाना, यही धरा स्वर्ग बनेगी। हम परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन जाएं। करना उस परमात्मा ने ही कार्य, और हमें सहयोगी क्या बनना है, हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को राजयोगी बनाना है, अपने संस्कार अपने स्वभाव को बदलना है। हमारे अंदर जो क्रोध ईर्ष्या द्वेष बदले की भावनाएं हैं, इनको बदल दें और इसकी जगह क्या ले आए, अपने जीवन में मधुरता, प्यार, नम्रता, सहजता, ऐसे एडजस्ट हो जाएं, इन गुणों को हम अपने जीवन में ले आएं। और ये सारे गुण स्वतः ही आएंगे जब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो आपको परमात्मा की पहचान मिली। एक चीज, परमात्मा एक है, ये पक्का याद रखना है। दो नहीं है, दस नहीं है, सब नहीं है, एक है परमात्मा, और वो केवल एक शिव बाबा हैं। अन्य सभी देवी देवताएं हैं, महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, परंतु परमात्मा नहीं है, परमात्मा एक है, और वो दिव्य ज्योति बिंदु है, यादगार शिवलिंग है। परमात्मा रहने वाले परम धाम के हैं, परम धाम से इस धरा पर आते हैं बच्चों को ज्ञान देने, और ज्ञान देने के लिए उन्होंने साकार माध्यम लिया प्रजापिता ब्रह्मा का। इनके मुख से ज्ञान देते हैं, और ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनने के कारण हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान उच्चारण हुआ, उस ज्ञान को सुना, ज्ञान को जिन्होंने धारण किया, वो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाए। तो शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम रहवासी हैं। शिव बाबा के जितने हम गुण गाते हैं, वो गुण मेरे अंदर भी हैं, पर मैं उनकी संतान हूं। मुझे देह अभिमान के आवरण को निकाल करके अपने आप को आत्मा समझना है। जो ही आत्मा सितारा समझेंगे, तो मेरे अंदर में जो गुण हैं, ये गुण चमकने लगेंगे, उभरने लगेंगे, कर्म में आने लगेंगे। वो गुणों का सागर है, बार बार याद करें। जितनी बार याद करेंगे, उतनी बार खुशी होगी, उतनी बार शक्ति मिलेगी। परमात्मा आप प्यार के सागर हैं। आप करके देखिए, जब आप ये बार बार कहेंगे परमात्मा प्यार के सागर, आप प्यार के सागर, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्यार आ जाएगा, भरपूर हो जाएंगे। तो परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आ चुके हैं, ब्रह्मा के द्वारा कार्य करा रहे हैं नई दुनिया की स्थापना का, और हम सभी भी परमात्मा के कार्य में मददगार बनेंगे। और जब यहां से जाएंगे, तो जो हमारा नजदीक जो भी सेवा केंद्र होगा, वहां जाकर के जो यहां का साप्ताहिक कोर्स होता है, उसे भी जरूर करेंगे। ये परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनने का पहला कदम होगा। ठीक है, अभी हम सभी थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा का अनुभव करेंगे। थोड़ा सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, अपने दोनों पांव को मिला लें, अपने हाथों को भी, या ज्ञान मुद्रा की अवस्था में, या दोनों हाथों को मिला लें आराम से। आंखें आपकी इच्छा है खुली रखें तो अच्छा है। सामने ब्रह्मा बाबा भी हैं और दिव्य ज्योति शिव बाबा भी हैं। हम शिव बाबा को अपने इन आंखों से देखते हुए मन की आंख से भी अनुभव करेंगे। जैसा जैसा शब्द हम बोलेंगे, आप उसको विजुलाइज कीजिएगा। कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान चारों तरफ से समेटते हुए अपने मस्तक के मध्य जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उसे ब्रिकुटी कहा जाता है। उस ब्रिकुटी में अपने मन को केंद्रित कीजिए। अपने लिए ही सोचिए, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली मैं आत्मा शरीर का मालिक हूं। अपने मस्तक में चमकते हुए सितारे को अनुभव करें। आत्मा का प्रकाश मस्तक में फैल रहा है, महसूस करें। आत्मा प्रकाशमान है। सर्व गुणों का पुंज है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शुद्ध पवित्र निर्मल हूं। मुझ आत्मा के पिता वह भी दिव्य ज्योति बिंदु हैं। एक चमकते हुए सफेद दिव्य सितारे को मन की आंख द्वारा देखें। सफेद चमकता हुआ दिव्य सितारा। मुझ आत्मा के पिता जो सर्वोच्च हैं, सबसे ऊंचे, सबसे बड़े मेरे पिता परमात्मा हैं। परमात्मा दिव्य सितारे से, दिव्य किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सूर्य समान चारों तरफ ये किरणें फैल रही हैं। ये किरणें परमात्मा के गुण हैं, शक्तियां हैं। मेरे पिता परमात्मा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, सर्व शक्तियों के दाता हैं। उसी दिव्य प्रकाश को बुद्धि में रखें, मैं भी चमकता हुआ सितारा आत्मा, उसी चमकते हुए दिव्य सितारे, सफेद सितारे को बार बार देखिए। मन की आंख उसी तरफ रखें, वो देने वाला दाता मेरा पिता है, मेरा शुभ चिंतक है। वो मुझे ही सदा देखता है, मैं भी उसे ही देखूं। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, परमात्मा स्वयं ज्ञान सूर्य उनका गुणों का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश सभी बच्चों के लिए है। महसूस कीजिए परमात्मा की शक्तियों की किरणें आप पर आ रही हैं। हमारा मन एकदम शांत होता जा रहा है, हल्केपन का अनुभव हो रहा है। सेटिस्फेक्शन मिल रही है, भरपूर बनती जा रही हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। सब प्रकार की थकान, तनाव, सब परेशानियां दूर भागती जा रही हैं। सूर्य के प्रकाश के आते ही अंधकार दूर भाग जाता है। परमात्मा स्मृति आते ही दुख, दर्द, रोग सब दूर भाग जाते हैं। बस उस ज्योति बिंदु को देखते रहें, अनुभव करते रहें। सब कुछ उन्हीं से पाना है, उन्हीं को कहना है, उनको देख मुस्कुराते रहना है। ओम शांति शांति शांति। ओम।